शांति, बहुत सुंदर गीत हम सबने सुना। विश्व परिवर्तन करना है तो उसकी शुरुआत स्वयं से करनी है, आत्म परिवर्तन से ही होगा विश्व परिवर्तन। और स्वयं का परिवर्तन करने के लिए स्वचिंतन की आवश्यकता है, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। जैसे आईने में चेहरा देखते हैं तो पता चलता है कि कहां क्या ठीक करना है, ऐसे स्वचिंतन, स्वदर्शन करने से ही पता चलता है कि मुझे स्वयं में क्या परिवर्तन करना है। इसलिए आज के प्रथम सत्र में हम स्वयं को यथार्थ रूप से जानेंगे कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और आखिर हमें कहां जाना है। हर धर्म में इस बात को महत्व दिया गया है कि नो थाई सेल्फ, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। तो हमारा वो आंतरिक अविनाशी चैतन्य स्वरूप कौन सा है, ये तो हमारा बाह्य शारीरिक स्वरूप है जो बदलता रहता है, लेकिन इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति कौन है और क्या है। हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं, हम पूछते हैं आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, तो उस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय ही एक दो को बताते हैं कि मैं मिस्टर फलाना हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, गुजराती हूं, मराठी हूं। जो हमारा दुनियावी दैहिक परिचय है वो ही हम एक दो को बताते हैं। इवन हमारी सूक्ष्म स्मृति में भी यही रहता है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। स्पष्ट है कि हम अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं, इसलिए शरीर भान में रहते हैं बॉडी कॉन्शियस बनकर हम जीवन जीते हैं। सुबह उठते हैं तब से लेकर रात सो जाते हैं तब तक जो भी कर्म हम करते हैं, उस समय अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस स्मृति को हम चेक करें तो आप पाएंगे कि कुछ एक कर्मों में हमें शरीर के नाम और रूप की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं मिस्टर फलाना पता है मैं कौन बोल रही हूं, मैं सुंदर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं युवा हूं, मैं बूढ़ा हूं, शरीर के नाम रूप और आयु की कॉन्शियसनेस हमें रहती है। कुछ एक कर्म व्यवहार में देह संबंध की कॉन्शियसनेस हमें रहती है और उस संबंध के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं कि मैं इसका पति हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं इनकी सास हूं। संबंध के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं। कुछ एक कर्म में हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं ऑफिसर हूं, मिनिस्टर हूं, उद्योगपति हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं एडवोकेट हूं। हमें अपने व्यवसाय का अभिमान रहता है, इसलिए हम अपने प्रोफेशन से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और ये कॉन्शियसनेस इतनी बनी रहती है कि इवन रिटायर्ड हो जाने के बाद भी हम यही अपने आप के लिए कहते हैं कि मैं एक्स चीफ इंजीनियर हूं, मैं एक्स एमएलए हूं। इसलिए आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग से ज्यादा हम ह्यूमन डूइंग बनते जा रहे हैं। इवन हमारे एक दो के साथ संबंध व्यवहार का आधार भी प्रोफेशन के आधार पर, पोजीशन के आधार पर ही चलता है। इस प्रकार धर्म की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। इवन जाति की कॉन्शियसनेस रहती है कि हम ब्राह्मण हैं, हम तो बनिया हैं, हम राजपूत हैं। ये जाति ज्ञाति की कॉन्शियसनेस रहती है। इवन भाषा की कॉन्शियसनेस कि हम गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, बंगाली है, तो ये भाषा की कॉन्शियसनेस रहती है। इवन नेशनलिटी की भी कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं अमेरिकन हूं, मैं जैपनीज हूं, मैं चाइनीज हूं। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमारा जीवन देह अभिमान युक्त बॉडी कॉन्शियस बन चुका है, इसलिए हमारा मैक्सिमम टाइम मनी एनर्जी भी आप देखेंगे कि देह के पीछे, दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे, देह संबंधों के पीछे ही ज्यादा खर्च होते हैं। प्रतिदिन के 24 घंटों का हिसाब आप लगाइए तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम टाइम देह के पीछे ही खर्च होता है। रोज हम कितना घंटा सोते हैं? कितना घंटा रोज हम कितना घंटा सोते रोज हम नहाते हैं, ड्रेसअप होते हैं, रोज हम भोजन करते हैं, कम से कम खाना पीना सोना नहाना धोना उसके पीछे हमारे 12 घंटे खर्च होते हैं। 50% टाइम केवल खाने पीने सोने नहाने धोने के पीछे ही खर्च होता है। अब बाकी रहे 12 घंटे में से नौकरी धंधे के पीछे कितना समय खर्च होता है? 7-8 घंटा नौकरी धंधे के पीछे खर्च होता है, मीन्स 35% टाइम नौकरी धंधे और उसके सामने घर कारोबार संभालने के पीछे खर्च होता है। अब वो नौकरी धंधा भी हम किस लिए करते हैं? किस लिए करते अक्सर क्या कहते हैं कि पेट के लिए करना पड़ता है, शरीर निर्वाह के लिए, जीवन आजीविका के लिए करना पड़ता है। अब बाकी रहे 2-3 घंटे पारिवारिक सामाजिक कार्यों में या टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब के पीछे हमारे खर्च हो जाते हैं। तो ये हमारी रोज की दिनचर्या है। इससे सिद्ध है कि हमारा जीवन देहाभिमान युक्त और सांसारिक बन चुका है। तो यहां हमें जीवन के इस प्रकार के सेटअप में अब हमें एक क्षण शांति से सोचने की आवश्यकता है कि हम खुद को देह समझ रहे हैं, देह संबंध और दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे हम इतना समय शक्ति धन खर्च कर रहे हैं, पर क्या मैं शरीर हूं? सोचिए कि क्या मैं शरीर हूं? जबकि हम सभी शरीर के बारे में जानते हैं, शरीर के बारे में हम जानते हैं, चित्र में आप देखिए कि वास्तव में शरीर क्या है। वास्तव में शरीर क्या है? हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है। वास्तव में शरीर हड्डी मांस चमड़ी और लहू से बना हुआ एक ढांचा है, जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। प्रकृति के पंच महाभूत है पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। शरीर इन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ है, इसलिए जब डेड बॉडी को अग्नि संस्कार करते हैं, हम कहते हैं कि पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पुनः पांच तत्व में मिल जाता है। जिसको सरल शब्दों में हम कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाता है। तो शरीर प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है। जैसे संसार में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, साधन है, वैभव है, पदार्थ है, चाहे ये कुर्सी है, सोफा है, मकान है, पंखे हैं, माइक है, ये जो भी चीजें हम इन आंखों से देखते हैं, एक छोटे स्क्रू से लेकर बड़े से बड़ी मशीन्स प्रकृति के पांच तत्वों से बनती हैं। तो जैसे ये चीजें जड़ हैं, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है, नाशवंत है, ऐसे प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ मानव शरीर भी जड़ है, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है। हम हरेक खुद के ही शरीर के साक्षी है कि बचपन से लेकर अब तक हमारा अपना शरीर हमारे अपने देखते देखते कितना बदल गया है। तो मनुष्यात्मा तो स्पष्ट है कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है। लेकिन मनुष्यात्मा, जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द कहने से तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। मानव शरीर प्लस आत्मा मिलाकर मनुष्यात्मा कहा जाता है। तो मानव शरीर के बारे में हम जानते हैं क्योंकि शरीर स्थूल है, प्रत्यक्ष है, हम इन आंखों से देख सकते हैं कि शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है। लेकिन शरीर से अलग, शरीर से भिन्न अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है जिसके अस्तित्व में, जिसकी उपस्थिति में हम शरीर द्वारा कर्म करते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं। जिस चैतन्य शक्ति के निकल जाने के बाद शरीर डेड बन जाता है, हमारे एक दो के साथ संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही चैतन्य शक्ति शरीर छोड़कर चली जाती है, तुरंत हम कहने लगते हैं कि भाई अब जल्दी करो, जल्दी उठाओ, जल्दी ले जाओ, माना हमारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। उस चैतन्य शक्ति को ही आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है। तो मनुष्यात्मा शब्द कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए, एक मानव शरीर और दूसरी चैतन्य शक्ति आत्मा। प्रश्न आपसे ये है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं पांच तत्वों का बना हुआ शरीर हूं जो दिखाई देता है, या इस शरीर को धारण करने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। जैसे देखने में तो बल्ब आ रहा है, ट्यूब आ रही है, लेकिन वास्तव में हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर ही बल्ब के द्वारा, ट्यूब के द्वारा प्रकाश के रूप में अनुभव होती है, हीटर के द्वारा गर्मी के रूप में अनुभव होती है। इस प्रकार देखने में शरीर आ रहा है, लेकिन वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, विचार करते हैं। ये सोचना चैतन्यता की शक्ति निशानी, जड़ चीजें सोच नहीं सकती है। मैं सोचती हूं, ये चैतन्यता की निशानी। देखने में मस्तक आ रहा है, लेकिन वास्तव में मस्तक द्वारा सोचने वाली शक्ति चैतन्य शक्ति है। हमें इच्छाएं होती है, कोई स्वादिष्ट चीज हम खाते हैं, हमें फिर खाने की इच्छा होती है, वो किसको होती है? चीज अब मुख में नहीं है, हमने चीज खाकर पूरी कर दी है, लेकिन जीव द्वारा लिया हुआ स्वाद फिर पाने की इच्छा किसको होती है? जीव को या चैतन्य? हमें स्मृति रहती है, कोई सुंदर स्थान आप देख करके आते हैं, उस स्थान की सुंदरता बार बार याद आती है, अभी आंखों के सामने वो सुंदर स्थान नहीं है, लेकिन देखी हुई सुंदरता हमें बार बार याद आती है, वो किसको याद आती है? आंखों को या चैतन्य? तो ये सोचना, इच्छाएं करना, स्मृति रहना, कर्म करना, अनुभव होना, ये चैतन्यता के निशानी है। इवन हमें दूसरों के लिए सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है, वो चैतन्यता की निशानी। अगर किसी के दुख दर्द कष्ट पर हमें जरा भी सहानुभूति हमदर्दी नहीं हो, जरा भी दया रहम नहीं आता है, तो हम उस व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं? क्या कहते कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर दिल है, कठोर दिल है। तो ये दया, रहम, स्नेह, अनुभूति, ये चैतन्यता के निशाने। स्पष्ट है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। आध्यात्मिक ज्ञान का ये प्रथम सत्य है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। इसलिए आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है, दिखाई नहीं देता है कि क्या चला गया, कैसा चला गया, पर हम कहते हैं कि आत्मा निकल गई, प्राण चले गए, लाइट हैस गोन, दीवा बुझ गया। वास्तव में ये ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, आत्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। इसी की यादगार भक्ति में हम ब्रकुटी में तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, हम भाइयों को, बहनों को, सबको अक्षत कुमकुम लगाते हैं, क्योंकि ये आत्मा स्मृति की निशानी है। भक्ति में हम तिलक करते हैं, पर हमें ज्ञान नहीं है कि ये आत्मा स्मृति का प्रतीक है। यहां हम तिलक नहीं करते हैं, पर खुद को आत्मा समझते हैं कि आत्मा मस्तक में स्थित होकर बॉडी को कंट्रोल करती है। हम कह सकते हैं कि ब्रेन बॉडी की मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है, और आत्मा चूंकि बॉडी की कंट्रोलर है, इसलिए मस्तक में स्थित होकर आत्मा शरीर को चलाती है। तो हमें स्पष्ट रहे कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं गलत, मैं पुरुष हूं ये गलत है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी कहा जाता है। मैं तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अगर ये एक सत्य हम सबको समझ में आ जाए और इसको हम स्वीकार कर ले, तो आज शरीर भान के कारण कितने भेद जो उत्पन्न हुए हैं कि ये स्त्री है ये पुरुष है, ये काला है ये गोरा है, ये युवा है ये बूढ़ा है, ये सारे भेदभावों को हम खत्म कर सकते हैं। मैं भी आत्मा हूं, प्रत्येक व्यक्ति भी एक आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई। चित्र में बताया है कि शरीर एक मोटर के समान है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान। एक ड्राइवर भी दिन रात मोटर चलाता है पर वो अपने आप को मोटर नहीं समझता है, उसे भी स्पष्ट है कि मोटर अलग है, मैं ड्राइवर मोटर से अलग हूं। इस प्रकार हर क्षण हम शरीर द्वारा कर्म करते हैं। हम इन आंखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से कर्म करते हैं। हम हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हैं पर हम शरीर नहीं हैं। हम इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक। मेरा मकान है, मैं मकान नहीं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। शरीर एक ड्रेस के समान है, मैं आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर हूं जो शरीर रूपी ड्रेस पहनकर पार्ट प्ले करती हूं। हम कह सकते हैं कि शरीर एक रथ के समान है, मैं आत्मा इस रथ पर सवार रथी के समान हूं। प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी स्पष्ट कहा है, गीता में आत्मा के लिए दो शब्द यूज किए हैं, रथी और देही। देह माना शरीर, देह को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा को देही कहा गया है। शरीर रथ के समान है, आत्मा इस रथ पर सवार रथी कही गई है। इसलिए जब डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं तो कहा जाता है कि फलाने की अरथी उठी। अरथी माना जिसमें रथी आत्मा नहीं है, उस डेड बॉडी को अर्थी कहा जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का ये प्रथम सत्य हमें स्पष्ट होना चाहिए कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं। कौन से शब्दों में श्रद्धांजलि देते हैं? क्या बोलते कि उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सदगति हो। तो देखिए, शरीर छोड़कर जाने वाली, क्योंकि गई कौन? गई कौन? आत्मा। शरीर तो यहीं पड़ा है ना, शरीर छोड़कर जाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के लिए हम कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। पर क्या जीते जी शरीर में रहते हम खुद को आत्मा समझते हैं? हाँ, समझते हैं? नहीं। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है कि जीवन भर हम खुद को शरीर ही समझते रहते। जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तब हम कहते हैं उस आत्मा को शांति मिले, पर जीते जी स्वयं को हम आत्मा नहीं समझते। इसलिए भल सुनने में ये जानी हुई साधारण बात लग रही हो, लेकिन ये मूल और मुख्य बात है कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। शरीर मेरे लिए एक साधन मात्र है। इस शरीर रूपी साधन को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, पर शरीर के अभिमान में नहीं आना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना है। तो ये पहला पाठ हमें बार बार उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते बोलते सुनते हमें मन ही मन ये अवेयरनेस रहे कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, मैं एक लाइट और माइट हूँ, मैं केवल शरीर नहीं हूँ। इसलिए केवल खाना पीना सोना जीवन नहीं है। तो सभी 3 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, हम ये पहला अभ्यास करेंगे। साइलेंस में स्वयं के प्रति केंद्रित हो जाएं। स्वयं के बारे में प्रथम सत्यता स्मृति में लाएं कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। जो मैं विचार दूं वो आप मन ही मन रिवाइज करेंगे। पहला अभ्यास, मैं आत्मा हूं। चैतन्य शक्ति हूं। ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। राइट साइड घूम जाएं। दूसरा अभ्यास, शरीर पांच तत्वों से बना है, जड़ है, नॉन लिविंग है। मैं आत्मा शरीर से अलग चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती हूं। राइट साइड घूम जाए, तीसरा अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है। हम सभी आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान है। हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। मुझे हरेक को रूहानी नजर से आत्मा दृष्टि से देखना है। राइट साइड घूम जाए, मुझे स्पष्ट है मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, परंतु मैं शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूं। मैं इन आंखों से देखती हूं, मुख से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ, पर मैं मुख नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, मैं इन कर्मेंद्रियों से अलग आत्मा। राइट साइड घूम जाए, जैसे ही मैं स्वयं को आत्मा समझती हूँ, मैं स्वयं के प्रति फोकस हो जाती हूं। केंद्रित हो जाती हूँ। मैं अपने विचारों को, इच्छाओं को, भावनाओं को समेट सकती हूँ, स्व में स्थित हो सकती हूँ। मैं आत्मा हूँ, दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति। बैठ जाए। इस प्रकार राजयोग की ये पहली प्रैक्टिस है खुद को आत्मा समझना। अब हम ये समझेंगे कि आत्मा किसको कहा जाता है, आत्मा माना क्या है। जैसे हम सबको पता है कि शरीर माना पांच कर्मेंद्रियां, हाथ पांव जिसे स्पर्शेंद्रिय हम कहते हैं, आंख, नाक, कान, मुख मिलाकर पांच कर्मेंद्रियां कहा जाता है। तो शरीर माना पांच कर्मेंद्रियां, आत्मा माना आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार मिलाकर उसे आत्मा कहा जाता है। मन और बुद्धि कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। मन और बुद्धि प्रकृति से नहीं बने हैं, आत्मा की चैतन्यता को ही मन और बुद्धि कहा जाता है। इसलिए मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा की चैतन्यता मन और बुद्धि से ही अभिव्यक्त होती है। तो मन शब्द से हम सभी परिचित हैं। अक्सर हम कहते हैं कि मन एकाग्र नहीं हो रहा है। बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी कंप्लेन करते हैं कि मन एकाग्र नहीं होता है, मेरा मन भटकता रहता है। तो मन किसको कहते हैं? मन भटकता है मीन्स क्या होता है, क्या होता है? मन कोई चीज तो नहीं है जो शरीर से निकलकर भटकती है। जब हम कहते हैं कि मेरा मन भटकता है मीन्स क्या होता है? अनेकानेक विचार आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि मन भटकता है। बैठे हैं एक परमात्मा को याद करने, लेकिन इसके अलावा अन्य अनेकानेक विचार आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि मन भटक जाता है। तो सिद्ध है आत्मा की विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनन शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार उत्पन्न करना। इसलिए हम मन को विचार शून्य नहीं कर सकते, क्योंकि मन का कार्य ही सोचना है। आत्मा की विचार शक्ति को ही मन कहा जाता है। इसलिए राजयोग में हम मन को विचार शून्य नहीं बनाते हैं, लेकिन विचारों की दिशा को बदलते हैं। हम चिंतन को समाप्त नहीं कर सकते, हम चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं। अगर हम नेगेटिव व्यर्थ सोचते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं सकारात्मक और आवश्यक चिंतन में मन लगा सकते हैं। इसलिए राजयोग में हम मन को मारते नहीं हैं, मन को सुधारते हैं। यहां हठ क्रियाओं से मन का दमन नहीं करना है, लेकिन मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर मन को सुमन, श्रेष्ठ मन हमें बनाना है। अब आप अपने आप को चेक करें कि अब तक हम शरीर भान में रहे, बॉडी कॉन्शियस रहे, इसलिए हमने अपने मन का उपयोग कौन से चिंतन में किया? अक्सर कौन सी बातें हम सोचते रहते? बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हमने मन का उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही हमने मन का अधिक उपयोग किया है। इसलिए आप देखिए, हमें वो ही विचार बार बार आते रहते हैं। हम पर चिंतन, संसार चिंतन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें हम करते हैं, सोचते हैं, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हरेक को पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, संसार चिंतन करना आता है ना? पर चिंतन कैसे करें वो सीखने के लिए कोई प्रोग्राम में गए आप? नहीं, क्योंकि हम शरीर भान में होने के कारण हमने अब तक पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, संसार चिंतन में ही मन लगा के रखा, इसलिए वो ही विचार बार बार आते। घंटों तक हम तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, उसमें समय की कोई सीमा नहीं रहती। तब तो कहते हैं कि अरे 2 घंटे निकल गए बात करते, पता भी नहीं चला। देर रात तक तेरी मेरी करते हैं, अरे रात के 11 बज गया, पता भी नहीं चला। उसमें किसी को नींद नहीं आती, اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 5 منٹ سو چنتن میں بٹھاتے ہیں تو بھی لوگ سو جاتے ہیں. ابھی بھی دیکھو آس پاس, کوئی سو تو نہیں رہا ہے, دیکھو ذرا اچھی طرح. اس میں ہمیں نیند آ جاتی. 5 منٹ بھی ہم سائلنس میں بیٹھ کر سو چنتن آتم چنتن کا ابھیاس نہیں کر پاتے. لوگ بار بار گھڑی کو دیکھتے رہتے, پریشان ہو جاتے. ہم پرماتم چنتن نہیں کر پاتے ہیں, اس کی یاد میں من نہیں لگا پاتے. تو کہتے ہیں من بھٹکتا ہے. اور ٹی وی فلم دیکھنا ہو تو ایکاگرتا کہاں سے آ جاتی. اس لیے اب ہمیں پریورتن کرنا ہے. اب ہمیں اپنا من سو چنتن, پرماتم چنتن, شبھ چنتن, شریشت چنتن میں لگانا ہے. یہ ہماری سب سے انمول شکتی ہے. پر ہم اپنے کتنے وچار ویسٹ کرتے ہیں, نیگیٹو کرتے ہیں. تو آتما کی وچار شکتی کو من کہتے ہیں, اور من کو ہمیں آتما چنتن, پرماتما چنتن, شریشت چنتن میں لگانا ہے. اب وچار अनेक आते हैं. मेडिकल साइंस कहता है कि प्रति 2 सेकेंड एक विचार मन में उत्पन्न होता है. व्यक्ति 1 मिनट में 20 से 30 विचार कर लेता है. प्रतिदिन ہم 30 से 40 हजार विचार उत्पन्न करते हैं. और जब हम, हर एक को अनुभव है कि जब हम टेंशन में होते हैं, भय में, चिंता में होते हैं, तो विचारों की स्पीड कितनी फास्ट हो जाती. पर सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं आते हैं. मन के अनेक विचारों पर हम निर्णय करते हैं कि पहले ये काम हम करेंगे, ये बाद में करेंगे. तो मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहा जाता है. आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है. बुद्धि का कार्य है डिसाइड करना, विचार को अंडरस्टैंड करना, सिलेक्ट करना, निर्णय करना. तो आत्मा की निर्णय शक्ति को बुद्धि कहते हैं. इसलिए कहते हैं कि मन घोड़े के समान चंचल है, तो बुद्धि उसकी लगाम है. पर आज बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं रही है, शक्तिशाली नहीं रही. इसलिए हम कहते हैं कि बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है. ऐसे कहते हैं ना, भाई इनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई. हम कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट संसार बन गए। तो व्यक्ति की बुद्धि पहले बिगड़ती है, फिर उनके कर्म और व्यवहार बिगड़ते हैं। इसलिए अगर हम बुद्धि को शुद्ध शक्तिशाली और दिव्य बनाना चाहते हैं तो हमें बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए कल आपको बताया था कि आज तन से भी ज्यादा मन और बुद्धि को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। इसलिए राजयोग में मन और बुद्धि हम स्वचिंतन परमात्मा चिंतन शुभ चिंतन में लगाते हैं और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं और जो भी कर्म हम करते हैं हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। कर्म के प्रभाव को ही स्वभाव संस्कार कहते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, खुलेआम करते हैं या गुफा में छिप कर करते हैं, लेकिन हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा में संचित होता है। और बार 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 अगर उसी प्रकार के कर्म हम करते रहते हैं वो प्रभाव दृढ़ हो जाता है जिसे स्वभाव संस्कार कहते हैं। तो कर्म ही संस्कार बनता है। हम 2 बार 10 बार 20 बार 30 बार गुस्सा करते रहते हैं हमारा स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। व्यक्ति 2 बार 10 बार 20 बार झूठ बोलता है उनकी आदत झूठ बोलने की हो जाती है। छोटी छोटी चीजों की चोरी करते 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 व्यक्ति पक्का चोर बन जाता है। तो हमें याद रहे कि कर्म ही संस्कार बनते हैं और आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ नहीं ले जा सकती है, पर जीवन भर किए हुए कर्मों का प्रभाव संस्कार के रूप में आत्मा के साथ जाते हैं। जैसे संस्कार ऐसी आत्मा की गति होती है और फिर से ऐसी ही नई जीवन स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन आश्चर्य की बात, जब कर्म करते हैं हम अटेंशन नहीं देते हैं, कर्म फल भोगते हैं, तब इंसान सोचने बैठता है कि मुझे इतनी भोगना क्यों आ रही है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, मेरे नसीब में ही ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। जब कर्म करते हैं तब अटेंशन नहीं देते, तब तो आप चेक कर, हम घंटों व्यर्थ सोचते रहते, हम घंटों व्यर्थ बोलते रहते हैं, तेरी मेरी करते रहते हैं, हम घंटों व्यर्थ कर्मों में लगे रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा है। जो हमारे सामने ही प्ले होगा, पर कर्म करते हैं तब अटेंशन नहीं देते, कर्म फल भोगते हैं तब सोचने बैठते हैं, और स्वयं का सही ज्ञान नहीं है इसलिए दूसरों को दोष देते रहते हैं कि इसके कारण मुझे प्रॉब्लम आते हैं, यही मुझे डिस्टर्ब करता है, यही इसने ही मुझे दुखी करके रखा है। हम दूसरों को दोषित करते हैं कि लोग ही ऐसे हैं, जमाना ही ऐसा है, समय ही ऐसा है, उसने किया ऐसा ना इसलिए मैंने किया, तो हम दूसरों को दोषित करते रहते हैं। परंतु सत्यता ये है कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, इसलिए हम हरेक अपने अपने स्वभाव संस्कार को देखें। आज हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारी आदतें कितनी बिगड़ गई। हर एक अपने आप को चेक करें, दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी हम रिमार्क्स देते हैं कि फलाना बहुत झूठा है, फलाना बहुत प्रपंची है, बहुत गुस्सेल है, दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं, पर खुद को देखना है, स्वदर्शन करना है कि मेरे अपने संस्कार, आदतें, टेंडेंसी कैसी बन गई। आज हरेक आत्मा कम या ज्यादा मात्रा में, लेकिन हरेक आत्मा दुखी बन गई है, पतित अशांत बन गई, कोई काम वासना के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई अहंकार के वश है, कोई लोभ ईर्ष्या द्वेष के वश। हम कह सकते हैं कि आज हम हरेक आत्माएं पतित दुखी अशांत बन गए, आपस में एक दो के आगे हम स्वीकार नहीं करते, झूठा अभिमान है इसलिए आपस में स्वीकार नहीं करते, पर जब हम ईश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, आरती गाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, गाते हैं कि नहीं, मैं पापी नीच कपटी हूं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, मो सम कुटिलन कोई। हम आरती में, भजनों में, प्रार्थना में हम गाते हैं, स्वीकार करते हैं। तो आज हमारे संस्कार विकृत बन गए हैं, इसलिए आत्मा तमोप्रधान पतित बन गए हैं। अगर हम अपने संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, आदतों को बदलना चाहते हैं, हमें अपने कर्मों को बदलना होगा, हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। और अगर हम अपने कर्म व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने चिंतन को बदलना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म का बीज है, कर्म ही संस्कार बनते हैं। अगेन, जैसे संस्कार ऐसे ही विचार बार बार आते रहते हैं। इसलिए राजयोग में हम चिंतन को बदलते हैं, क्योंकि विचार मन में आता है, फिर वो वाणी से बाहर होता और आचरण में आता है। इसलिए मन बुद्धि को शुद्ध दिव्य बनाने की आवश्यकता है। यहां एक और सत्य हमें समझना है कि आज भल हम सभी आत्माएं पतित, दुखी, अशांत, तमोप्रधान बन गई हैं, परंतु ओरिजिनली हम आत्माएं पतित नहीं हैं। हम कहते ही है कि हम दुखी हो गए, माना पहले दुखी नहीं थे, पूरी दुनिया बिगड़ गई है, मीन्स पहले अच्छी थी। तो ये मूल सत्य है कि हरेक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। हरेक आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप है। इसलिए देखिए हमें जीवन में क्या चाहिए, शांति चाहिए कि अशांति चाहिए, क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्यों शांति चाहिए? क्योंकि हरेक आत्मा ओरिजिनली शांत है। शांति हमारी नेचर है, शांति आत्मा का स्वधर्म है। पर जब हम अपने आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं, शरीर भान में आ जाते हैं, तो हम गुस्सा करने लगते हैं। जैसे पानी का असली गुण शीतलता है, लेकिन वही पानी अग्नि पर रखो तो वो गरम हो जाता है, उबलने लगता है। पर अग्नि से फिर हटा दो तो धीरे धीरे वापस ठंडा होने लगता है। इस प्रकार हरेक आत्मा ओरिजिनली शांत है, इसलिए हमें जीवन में शांति चाहिए। पर जब हम आत्मा स्वरूप भूल जाते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं, तो गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए अब हम ये याद रखेंगे और बार बार हम ये चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरा स्वधर्म शांति है। अब हम ये नहीं कहें कि मैं कहता हूं ना मेरा स्वभाव ही गुस्सेल है, मैं कहता हूं ना मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर हम यही कहेंगे, यही सोचेंगे, तो हम गुस्सा ही करते रहेंगे। हमारी नेचर ओरिजिनल शांति की है, गुस्से की नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, आता है और जाता है। आखिर क्या रहता है? शांति रहती है। कितना भी गुस्सा करके आखिर व्यक्ति शांत हो जाता है ना। कोई 24 आवर्स गुस्से में रह सकता है? नहीं, क्योंकि वो उसकी नेचर नहीं। इसलिए अब ये चिंतन की प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, मेरी ओरिजिनलिटी शांति है, मुझे जीवन में शांति चाहिए क्योंकि मैं शांत हूं। इस प्रकार हमें जीवन में सुख चाहिए या दुख चाहिए? सुख चाहिए। हम सुख के लिए प्रयास करते क्योंकि आत्मा ओरिजिनली सुख स्वरूप है। इसलिए दुख में भी सुख को ढूंढते हैं। दुख के दिन जल्दी जल्दी पूरा करना चाहते हैं, सुख के हर क्षण एंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, या हमारी कोई घृणा करे, नफरत करे वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? प्यार करे वो अच्छा लगता है। हर आत्मा को प्यार चाहिए। शरीर से भल कोई बूढ़ा है, युवा है, बच्चा है, हर आत्मा को प्यार चाहिए क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। हमें सब खुशी आनंद में रहे वो अच्छा लगता है। कोई उदास, निराश, हताश रहे वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम उनको खुशी में लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर एक आत्मा ओरिजिनली आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है, ये हमारी रियल नेचर है। वो गुस्सा करना वो तो विकृति है, वो हमारी नेचर नहीं। हमें पवित्रता, स्वच्छता, पवित्रता, सच्चरित्रता अच्छी लगती। हमें गंदगी, विषय वासना, बदचलन अच्छी नहीं लगती है क्योंकि आत्मा शुद्ध और सत्य है। हम सदा ज्ञान पाना चाहते हैं, अज्ञान मिटाना चाहते हैं। हमें हर बात जानना, सीखना, समझना अच्छा लगता है क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमें शक्तिशाली, साहसी, हिम्मतवान अच्छे लगते हैं, हमें कमजोर कायर पसंद नहीं आते, क्योंकि आत्मा स्वयं शक्ति है। तो ये है हमारी ओरिजिनल 7 क्वालिटीज। शरीर 5 तत्व से बना है, आत्मा 7 गुणों का सार है। आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद प्रेम स्वरूप। हम कह सकते हैं कि शांति जंगलों में नहीं है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। सुख साधनों में नहीं है, इन सब साधनों का सुख भी तब अनुभव होता है जब मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। अगर मुझे सुख चैन नहीं है तो अपार वैभव महल में भी सुख नहीं लगता है। मैं आत्मा सुख स्वरूप। आनंद पिक्चरों में, होटलों में नहीं है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। घर में कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी महफिल हो पर मुझे खुशी नहीं है तो मुझे मजा नहीं आता है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। तो सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति मुझ आत्मा में समाया हुआ है, इसलिए कहते हैं बाहर नहीं भटकना है, भीतर जाना है। इसका अर्थ ये है आत्मस्वरूप में स्थित होना है। जैसे ही हम आत्मस्थ होते हैं मन शांत होने लगता है, हमें स्वयं में ही आनंद सुख महसूस होता है। और लास्ट बात कि हम सभी आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। इन आंखों से जो दुनिया हम देख रहे हैं, जहां हम जीवन जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म फल भोग रहे हैं, ये साकार मनुष्य लोक है। इसको फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। ये 5 तत्वों की बनी हुई भौतिक दुनिया है। चित्र में सबसे नीचे आसमानी रंग से बताया है कि पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि 5 तत्वों से बनी हुई ये साकार दुनिया, स्थूल दुनिया है। इसको फिजिकल वर्ल्ड, कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। आत्मा इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करती है, कर्म फल भोगती है, इसलिए इस दुनिया को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। ये कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। इसलिए हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। दुनिया मुसाफिर खाना है। हम कहते हैं ना, संसार रैन बसेरा, जीवन यात्रा आत्मा को मुसाफिर कहा जाता है। हम कहते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा है, सृष्टि रंगमंच है। हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स हैं। शरीर हमारी ड्रेस है, और रोज कितने वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। हम शरीर ड्रेस नहीं है, हम ये रोल्स नहीं है जो प्ले करते हैं, हम आत्मा एक्टर है। तो ये कर्म क्षेत्र है हमारा असली घर। इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार है। इसलिए हरेक को जीवन में चेक करना, हरेक को जाने अनजाने कभी न कभी ऊपर जाने की इच्छा होती है कि नहीं, कि इससे तो चले जाए तो अच्छा है। क्योंकि हमारा असली घर इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार परम धाम है। चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से जो दिखाया है वो प्रकृति का 6वां अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है। हम आत्माएं उस ब्रह्मलोक की निवासी, जिसे हम परलोक, ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम कहते हैं। चित्र में बताया है जहां हम ज्योति बिंदु आत्माएं अपने असली आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, वहां हमें शरीर नहीं है। इसलिए कर्म नहीं है, हलचल नहीं है, आवाज नहीं है, वो शांति की दुनिया है, वो साइलेंस वर्ल्ड है, ये टॉकी वर्ल्ड है। यहां हम आवाज में आते हैं क्योंकि यहां हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं। हमारा असली घर शांति धाम है। आत्मा शरीर प्रकृति के बंधन से मुक्त अपनी साइलेंट मर्ज स्टेज में वहां रहती है। हरेक आत्मा अपने रोल अनुसार इस सृष्टि पर आकर शरीर धारण कर कर्म करती है, कर्म फल भोगती है। तो इस दुनिया में रहते हुए अगर ये सत्य हमें याद रहे कि हमारा असली घर परम धाम है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। तो इस दुनिया में रहते हुए भी हम दुनिया से डिटैच, न्यारे, अलिप्त रह सकते हैं। और इस शरीर में रहते हुए अगर मुझे ये सत्य याद रहे कि मैं आत्मा हूं, तो देह में रहते, देह द्वारा कार्य करते हुए भी हम देहभान से मुक्त आत्माभिमानी रह सकते हैं। इसलिए राजयोग की पहली प्रैक्टिस है खुद को आत्मा समझना, आत्मस्मृति में रहना, आत्मचिंतन करना, ताकि हम अपने ओरिजिनल असली गुणों का अनुभव कर सके। तो ये है राजयोग का प्रथम सत्र, स्वयं का सही परिचय। हम 5-7 मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग हाथ में या गोद में न रखें, साइड में रख दें। और एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठेंगे। कमर सीधी रखें ताकि थके नहीं। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन स्वचिंतन, आत्मचिंतन का अभ्यास करना है। कैसे स्वचिंतन करें, मैं सजेशंस देती जाऊंगी, कमेंट्री के रूप में मैं विचार देती जाऊंगी। आपको मुख से बोलना नहीं है, मुख से रिपीट नहीं करना है, लेकिन जो विचार मैं दूं वो मन ही मन रिवाइज करना है, उसके अर्थ को समझना है, उसे फील करना है, उस अनुभव में स्थित होना है। आंखें नेचुरल खुली रहने दे, चिंतन मन से करना है, इसलिए आंख बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का अभ्यास मैं करा रही हूं, इसलिए मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। खुद को आत्मा समझते हुए आत्मदृष्टि से देखते हुए हमें स्वचिंतन का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। जो देखने में आ रहा है वो शरीर है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, जो इस शरीर को धारण कर पार्ट बजाती हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मैं आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा की अविनाशी एक्टर हूं। शरीर मेरी ड्रेस है। मैं आत्मा शरीर धारण कर कर्म करती हूं। मेरा असली घर शांति धाम है। जो इस भौतिक जगत से दूर है, पांच तत्वों से पार है, जहां अखंड लाल ज्योति ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। मैं उस ब्रह्मलोक की निवासी हूं। ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में स्थित हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांत आत्मा हूं। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूं, विचार समेटने लगते हैं। मन शांत होने लगता है। मैं स्वयं में एकाग्र होने लगती हूँ। मैं महसूस करती हूँ कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध पवित्र हूँ। मैं शांत और शीतल हूँ। मैं सत्य हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत सनातन हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं स्वयं एक शक्ति हूँ, दिव्य ज्योति हूँ। ओम शांति।